بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراج ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے آدرنیہ شروتا زہرہ زیدی اور ساتھیوں کا سلام سویکار کیجیے۔ شروتاؤں، آج کے کاریکرم کا شبھ آرمبھ پوتر قرآن کے سورہ حجرات کی چھٹی اور ساتویں آیتوں کی تلاوت اور انواد سے کیا جا رہا ہے۔ قاری ہیں شری عبد الباسط۔
بسم الله الرحمن الرحيم
يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا
اللہ کے نام سے جو اتین کرپاشیل اور دیاوان ہے۔ ہے ایمان والو، یدی کوئی ادھرمی کوئی خبر لے کر آئے تو چھان بین کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم کسی گٹ کو انجانے میں کوئی ہانی پہنچا بیٹھو اور پھر تمہیں اپنے کیے پر پشچتاپ ہو۔ اور جان لو کہ تمہارے بیچ ایشور کے پیغمبر موجود ہیں۔ بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ یدی پیغمبر ان میں تمہارا کہا مان لیا کریں तो उल्टे तुम ही कठिनाई में पड़ जाओ, परंतु ईश्वर ने तुम्हें ईमान का प्रेम दिया है और उसे तुम्हारे हृदयों में सजा दिया है, और कुफ्र उल्लंघन और अवज्ञा को तुम्हारे लिए अप्रिय बना दिया है, और ऐसे ही लोग ईश्वर के अनुग्रह और उपकार से सही मार्ग पर हैं।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। आज रविवार है, आज़र की 14, रबीउल सानी की 29 और दिसंबर की 5 तारीख। श्रोताओ, हमारा ये कार्यक्रम आप शॉर्टवेव में 31 मीटर बैंड बराबर 9390 किलोहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं। हमें आशा है कि हमारा आज का प्रसारण भी आपको अवश्य पसंद आएगा। पत्र व्यवहार के लिए हमारे पते नोट कर लें। हमारा ईमेल एड्रेस है hindi@ws.iribi.ir, जबकि ताज़ा समाचारों से अवगत होने के लिए हमारी वेबसाइट का पता है parstoday.com/hi, और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 00989035065492। श्रोताओं, हमारे आज के कार्यक्रम की रूपरेखा नोट कर लें। सदा की भांति आप सबसे पहले समाचार सुनेंगे, उसके पश्चात कार्यक्रम होगा अनमोल बातें, उसके पश्चात आप दैनिक कार्यक्रम सुनेंगे राजनीतिक चर्चा, उसके पश्चात आप सुनेंगे साप्ताहिक कार्यक्रम कुरान ईश्वरीय चमत्कार, और सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा आजकल। श्रोताओ, ये तो थी हमारे आज के कार्यक्रम की रूपरेखा, और अब आप कुछ ही क्षणों में रेडियो तेहरान से समाचार सुनेंगे। और अब आप रेडियो तेहरान से समाचार सुनिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। ईरान और वेनेजुएला ने द्विपक्षीय संबंधों में विस्तार पर बल दिया है। उप विदेश मंत्री ने बल देकर कहा है कि ईरान अपनी मांगों से पीछे नहीं हटेगा। भारत में नागालैंड में पुलिस ने गलती से 13 लोगों की हत्या कर दी। इंडोनेशिया में ज्वालामुखी फटने से भारी तबाही, 13 की मौत, कई लोग घायल व लापता हो गए हैं। और अब आप मरियम मेहरदादी और मोहम्मद मेहदी से विस्तार से समाचार सुनिए।
इस्लामी गणतंत्र ईरान और वेनेजुएला के राष्ट्राध्यक्षों ने दोनों देशों के निकटवर्ती संबंधों में और अधिक विस्तार के बारे में विचार विमर्श किया। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट के अनुसार इस्लामी गणतंत्र ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो से टेलीफोनी वार्ता में दोनों देशों के संबंध को रणनीति करार दिया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों में संबंधों के विस्तार के लिए व्यापक संभावनाएं पाई जाती हैं, जिसके दृष्टिगत तेहरान काराकास संबंधों विशेषकर आर्थिक और व्यापारिक लेनदेन को और भी विस्तृत करने की आवश्यकता है। राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी ने वेनेजुएला के साम्राज्यवाद विरोधी नीतियों और साम्राज्य के मुकाबले में वहां की सरकार और जनता के संघर्ष को वेनेजुएला पर लगे एक पक्षीय और अत्याचारपूर्ण प्रतिबंधों का कारण करार दिया। राष्ट्रपति ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को चुनाव में जीत पर बधाई दी और कहा कि चुनाव का सफलतापूर्वक आयोजन उनकी सरकार की शक्ति और क्षमता का चिन्ह है। उन्होंने तेल की अंतर्राष्ट्रीय संस्था ओपेक में भी दोनों देशों के संयुक्त सहयोग पर बल दिया। इस वार्ता में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने भी ओपेक में ईरान की भूमिका का उल्लेख करते हुए कहा कि आपसी प्रयासों से तेल की मंडी में स्थायी बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि ईरान और वेनेजुएला संयुक्त प्रयास से बहुत कुछ कर सकते हैं, और हमें आशा है कि दोनों देशों के संयुक्त आयोग की मदद से नए समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे।
उप विदेश मंत्री ने बल देकर कहा है कि ईरान अपनी मांगों से पीछे नहीं हटेगा और अमेरिका को चाहिए कि वो पहल करे। علی باقری غنی نے اٹلی کی انسر نیوز ایجنسی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی گنتنتر ایران ورش 2015 میں ہونے والے پرمانو سمجھوتے کو لاگو کرانے اور پرتیبندھوں کو سماپت کرانے کے لیے اپنی مانگوں سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ امریکہ تھا جو ورش 2018 میں ایک پکش روپ سے پرمانو سمجھوتے سے نکلا تھا، اتھا اسے پہلا قدم اٹھانا چاہیے۔ ایران کے اپ ودیش منتری نے اسی پرکار کہا کہ وینا میں گٹ 4+1 کے بیچ ہونے والی وارتا پرکریا تارکک ہے اور اسی کارن یہ وارتاؤں کا آدھار بن سکتی ہے۔
ودیشی معاملوں کی اسٹریٹجک پریشد کے سچیو نے امریکہ کو افغانستان کی ورتمان استھتی کا ذمہ دار بتایا ہے۔ سید عباس عراقچی نے افغانستان کے معاملوں میں راشٹر سنگھ کے مہا سچیو کے وشیش دوت کے ساتھ بھینٹ وارتا میں کہا کہ پشچم ایشیا میں امریکہ کے اوپستھتی چھتری لوگوں کے لیے سمسیاؤں کا کارن بنی ہے۔ اس بھینٹ وارتا میں افغانستان کے معاملے میں راشٹر سنگھ کے مہا سچیو کے وشیش دوت نے افغانستان کے بارے میں ایران کے پربھاوی پریاسوں کی سراہنا کرتے ہوئے کہا کہ ایران دوارا افغانی شرارتیوں کو شرن دیے جانے پر آبھار جتایا۔ 20 سال تک افغانستان میں موجود رہنے کے بعد لجا جنک ڈھنگ سے امریکیوں کو اس دیش سے جانا پڑا، جس سے پورے وشو میں امریکہ کی بہت بدنامی ہوئی۔ گیات ہے کہ 15 اگست سے طالبان نے افغانستان پر نینترن کر رکھا ہے۔
سیریا کے ودیش منتری فیصل مقداد ایک ششٹمنڈل کے ساتھ رویوار کو تہران پہنچ رہے ہیں۔ اسلامی گنتنتر ایران کے نمنترن پر فیصل مقداد اور ان کے سہایک بشار جعفری رویوار کی شام ایک پرتنیدھی منڈل کے ساتھ تہران آ رہے ہیں۔ تہران میں وہ ایران کے ورشٹھ ادھیکاریوں کے ساتھ بھینٹ وارتائیں کریں گے۔ الوطن سماچار پتر کے انوسار سیریا کے ششٹمنڈل کی ایران یاترا کا ادیش دونوں دیشوں کے بیچ اسٹریٹجک سمبندھوں کو مضبوط کرنا ہے۔ 9 اکتوبر کو دمشق نے ایران کے ودیش منتری حسین امیر عبداللہیان کی میزبانی کی تھی۔ اس یاترا میں ایران کے ودیش منتری نے سیریا کے راشٹرپتی کے ساتھ ملاقات میں دونوں پکشوں کے سمبندھوں کو ادھک مضبوط کرنے کے مدعے پر وچار ومرش کیا تھا۔
یہ سماچار آپ ریڈیو تہران سے سن رہے ہیں۔ سیریا میں ایک بار پھر امریکی سینکوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ پوروی سیریا کے دیرزور پرانت میں امریکی سینا کے اڈے پر راکٹوں سے حملے ہوئے ہیں۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے انوسار سیریائی سوتروں کا کہنا ہے کہ دیرزور میں کونیکو آئل فیلڈ میں امریکہ کے سینے ٹھکانے پر 3 راکٹ فائر کیے گئے۔ ابھی تک ان حملوں کا بیورا سامنے نہیں آیا ہے، کنتو یہ کہا جا رہا ہے کہ راکٹ حملوں کے بعد امریکی سینا کے ہیلی کاپٹروں نے چھت پر اڑانے بھرنی شروع کر دیں۔ امریکی ادھیکاریوں کی اور سے اس بارے میں کوئی آدھیکارک بیان سامنے نہیں آیا ہے۔
ایک اسرائیلی سینک کے سر میں اس سمے گولی لگی جب وہ فلسطینیوں کو نشانہ بنا رہا تھا۔ غزہ پٹی میں ایک اسرائیلی سینک کے سر میں گولی لگنے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے۔ اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اسرائیلی سینک فلسطینی پردرشنکاریوں کو نشانہ بنا رہا تھا کہ اچانک اس کے سر میں گولی لگی۔ اکت سینک ہیلمٹ میں اکت سینک ہیلمٹ پہنے ہوئے تھا، جس کی وجہ سے اسے گہری چوٹ نہیں لگی اور وہ بچ گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ فلسطینی سنائپر نے اس سینک کو کافی دوری سے گولی ماری۔ اس گھٹنا نے اسرائیلی سینکوں کی چنتا بڑھا دی ہے۔
فلسطین کے اسلامی پرتیرودھ آندولن حماس کے پولیت بیورو چیف نے کہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ سمبندھ استھاپت کرنے کا کرم رکوانے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ اسماعیل ہنیہ نے مہر نیوز ایجنسی سے بات کرتے ہوئے بل دے کر کہا کہ اسرائیلیوں کے ساتھ سمبندھوں کی بحالی کا کرم شیگھر بند ہونا چاہیے، کیونکہ یہ نیتی تباہی کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ سپشٹ ہے کہ زامیہ کے ساتھ سمبندھ ثابت کرنا کیول اسرائیل کی سیوا کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ زامیہ کے ساتھ سمبندھوں کی بحالی مسلم جگت کے روب و دبدبے کو ختم کر دے گی۔ حماس کے پرمکھ نے کہا کہ اسرائیل کے ساتھ سمبندھوں کو بحال کرنے والوں کو اپنی نیتیوں پر پنروچار کرنا چاہیے۔ اسماعیل ہنیہ نے کہا کہ ہم سمبندھوں کو بحال کرنے والی سرکاروں کو اپنے فیصلوں پر پنروچار کرنے کا نمنترن دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بیت المقدس کی بنیاد زائنی وواد اور دشمنی پر کھڑی ہے، اور پرتیرودھ مورچہ اپنی مضبوطی اور تیاری کا کرم جاری رکھے گا۔
भारत की पुलिस ने इस देश के नागालैंड क्षमा कीजिएगा भारत के नागालैंड में 13 लोगों की हत्या हो गई है। भारत की पुलिस ने इस देश के नागालैंड राज्य में सुरक्षा बलों के हाथों 13 आम लोगों की धोखे से हुई हत्या की बात कही है। फार्स न्यूज के अनुसार भारतीय सुरक्षा बलों ने म्यांमार की सीमा से लगने वाले राज्य नागालैंड में धोखे में 13 आम लोगों पर गोली चला दी जिससे उनकी मृत्यु हो गई। सुरक्षा बलों ने उनको आतंकवादी समझकर मार दिया। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव व्याप्त है। स्थानीय लोगों ने सुरक्षा बलों के वाहनों को आग लगा दी। भारत के गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि इस खबर को सुनकर मैं बहुत दुखी हूं। उन्होंने कहा कि इस बारे में जांच शुरू कर दी गई है और न्यायपूर्ण ढंग से इस बारे में काम किया जाएगा।
भारत और रूस के बीच कल सोमवार से नई दिल्ली में संयुक्त बैठक हो रही है। भारतीय सूत्रों ने ऐलान किया है कि कल से दिल्ली में होने वाली बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की उपस्थिति में होगी। इस बैठक में दोनों पक्ष रक्षा, व्यापार, पूंजी निवेश, ऊर्जा और तकनीक के संबंध में समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे। इसी प्रकार इस बैठक में दोनों पक्ष अफगानिस्तान में होने वाले परिवर्तनों और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकवादी गुटों के बारे में भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। प्राप्त समाचारों के अनुसार रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और प्रतिरक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु आज रात को दिल्ली पहुंच रहे हैं।
इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर सबसे ऊंचा ज्वालामुखी फटा है जिसमें अब तक कम से कम 13 लोगों की मौत हो चुकी है। इंडोनेशिया के आपदा प्रबंधन ने बताया कि मृतकों में अभी तक केवल 2 लोगों की पहचान हो पाई है जबकि कई लोग घायल व लापता हैं। इंडोनेशिया के आपदा प्रबंधन एजेंसी के प्रवक्ता अब्दुल मुहारी ने बताया है कि मरने वाले 13 लोगों में से 2 की पहचान कर ली गई है। इस प्राकृतिक आपदा में कई लोग घायल भी हुए हैं जिसमें कई अस्पताल में भर्ती हैं। सरकार का कहना है कि अधिकतर लोग ज्वालामुखी फटने के कारण जल गए हैं। इंडोनेशिया के टोबेला से 259 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर की दिशा में आज सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे। अमेरिका के जियोलॉजिकल सर्वे से मिली जानकारी के अनुसार रिक्टर पैमाने पर इस भूकंप की तीव्रता 6.0 दर्ज की गई है। आज सुबह आने वाले भूकंप से होने वाली क्षति के बारे में अभी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। और इसी के साथ रेडियो तेरान से समाचार समाप्त हुए।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। अनमोल बातें। दोस्तों, कार्यक्रम अनमोल बातें की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आज हम वरिष्ठ नेता की नज़र में ईश्वरीय वादों के बारे में चर्चा करेंगे। कायम रिजवी का सलाम स्वीकार कीजिए। दोस्तों, इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता आयतुल्लाह लुज़्मा सैयद अली खामिनई ने अपने संबोधन में ईश्वर के मार्ग में प्रयास करने वालों की कामयाबी के लिए ईश्वरीय वादों और वचनों पर प्रकाश डाला। उन्होंने शुभ सूचना देते हुए कहा कि ईश्वर कभी भी अपने वादों की खिलाफ वर्जी या वादों का उल्लंघन नहीं करता।
خداوند متعال چند جای قرآن به روشنی و با صراحت وعده داده است که اگر کسی در راه خدا و در راه دین تلاش کند خدا او را نصرت خواهد داد.
ईश्वर ने पवित्र कुरान में कई जगहों पर स्पष्ट शब्दों में ये कहा है कि अगर कोई ईश्वर के मार्ग में और धर्म के रास्ते में कोशिश करे तो उसकी मदद होगी। ये ईश्वरीय वादा है। वो एक स्थान पर कहता है कि यहाँ पर
لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ کہا گیا ہے اور کئی چیزوں پر بل بھی دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نشچت روپ سے یقینی طور پر اللہ ان لوگوں کی مدد کرے گا جو لوگ ایشور کے دھرم میں کوششیں کرتے ہیں۔
خب یہ وعدہ است، وعدہ الہی است، به این وعدہ باید اعتماد کرد۔
جی ہاں، یہ ایک وچن ہے، اللہ کا وعدہ ہے، اس وعدے اور وچن پر وشواس کرنا چاہیے۔ بہمن ماہ کی 19 تاریخ کو باوجود اس کے کہ یہ گھٹنا گھٹی، دیکھا گیا کہ کچھ سینک آئے اور انہوں نے کرانتی کی آگیا پالن کا انوسرن کیا۔ ابھی بھی کچھ لوگ تھے کہ جو سنتشت نہیں تھے، ان کو یقین نہیں تھا، انہیں آشا نہیں تھی کہ یہ کام پرینام تک پہنچے گا، لیکن سورگی امام خمینی کو ایشوری وعدوں پر وشواس تھا۔ سورگی امام خمینی اور وہ لوگ جو امام خمینی کے دشٹیکون پر چلتے تھے اور ان کا کہا مانتے تھے، انہیں پتا تھا کہ یہ وعدہ نشچت روپ سے ویوہارک ہوگا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اسپیڈ دھیری ہو، جب وشواس تھا، بھوشیہ کے پرتی آشا تھی، وہ کم اسپیڈ میں آگے نہیں بڑھنا چاہتے تھے۔ یہ بہت ہی مہتوپورن حساب کتاب ہے کہ انسان کو پتہ رہنا چاہیے کہ ایشور اپنے وعدوں پر پرتیبدھ رہتا ہے۔ یہ بھی قرآن کی آیت ہے کہ
وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ،
کوئی بھی اللہ سے زیادہ اپنے کیے گئے وعدوں کے پرتی وفادار نہیں ہے۔ ایشور نے وعدہ کیا ہے اور وہ اس پر نشچت روپ سے عمل کرے گا۔ تو دوستو، کارکرم کا سمے یہیں پر سماپت ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی گنتنتر ایران کی آواز۔
راجنیتک چرچا۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ دینک کارکرم راجنیتک چرچا کے ساتھ آپ کی سیوا میں اپستھت ہیں قائم رضوی کا سلام سویکار کیجیے۔ سیریا میں ایران کی پردرشنی، فلسطینی شہید کے شف کی وطن واپسی اور کشمیر کے بارے میں کارکرم میں وستار سے چرچا کریں گے۔ سیریا کے پنر نرمان میں سہایتا کے اُدیش سے ایران نے دمشق میں ایک پردرشنی لگائی ہے، جسے بہت ہی سفل بتایا جا رہا ہے۔ اس بارے میں ایک رپورٹ لے کر موجود ہیں احمد عباس۔
سیریا میں اسلامی گڑتنتر ایران کی اور سے لگائی گئی ویاپارک پردرشنی کو کامیاب مانا گیا۔
ما پذیرای
ایران کے ادھمی نے اتساہت نظر آئے۔ انہوں نے کہا کہ 3 سیریائی منتریوں نے پردرشنی کو آ کر دیکھا۔ ویاپار کے میدان میں کوئی بھی ویاپاری اپنے ٹریڈ رہس سے کسی کو بھی نہیں بتاتا، اور خاص طور پر اس پر توجہ رکھی جاتی ہے۔
سیتم ابراہم،
اسی لیے سیریائی ادھمی نے کہا کہ 5 ایرانی کمپنیوں سے ہماری ڈیل ہوئی ہے، مگر ہستاکشر کے سمے بتائیں گے۔ ایران کی یوا ویاپاری کا کہنا تھا کہ ہم کچھ ایسے سیریائی ویاپاریوں کی تلاش میں ہیں جن کی مدد سے ہم اپنے اتپادوں کو سیریا نریات کر سکیں۔ یہ پردرشنی الگ الگ میدانوں میں ایرانی ادیوگوں کی کشمتا کو پردرشت کرنے میں کافی حد تک کامیاب رہی ہے۔
ما در مرحلی بازسازی،
ایران کے بڑے ادیمی کا کہنا تھا کہ ہم سیریا کے پنر نرمان کی پرکریا میں سہایتا کے لیے سیریا میں موجود ہیں۔ یہ ضروری تھا کہ تکنیکی کھیتر میں پونجی نویش کے मैदान में उत्पादों की सप्लाई के क्षेत्र में ईरान की क्षमताओं को सामने लाया जाए। सीरिया के कृषि मंत्री ने प्रदर्शनी को देखा और कृषि के क्षेत्र में सक्रिय ईरान की कंपनियों के स्टॉल को गौर से देखने के बाद मीडिया से बात की। सीरिया के कृषि मंत्री का कहना था कि इस्लामी गणतंत्र ईरान के साथ कृषि के क्षेत्र में सहयोग हो सकता है। बहुत सारे उत्पाद ऐसे हैं जिनमें दोनों देशों के बीच सहयोग होना चाहिए। हम कागजी कार्यवाही और आर्थिक सपोर्ट के रास्ते खोल रहे हैं और ईरान और सीरिया के बीच सहयोग के आयामों को विस्तार दे रहे हैं। इस समय जब ईरान और सीरिया के बीच आर्थिक रिश्ते और सहयोग की प्रक्रिया तेजी से बढ़ रही है, तो इस प्रकार की प्रदर्शनियों का आयोजन दोनों देशों के रिश्तों को नई गति देने में मददगार साबित होगा। इसीलिए इस तरह की प्रदर्शनियों का आयोजन लगातार किया जा रहा है और अच्छा नतीजा भी मिल रहा है। दमिश्क से IRIB के लिए इसाम हिलाली की रिपोर्ट।
और अब एक अन्य विषय। इसराइली फिलिस्तीनियों को शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की यातनाएं देते रहते हैं। फिलिस्तीनियों को दी जाने वाली मानसिक यातनाओं के संबंध में एक रिपोर्ट लेकर हाजिर हैं अख्तर अब्बास।
आज फिलिस्तीन के पश्चिमी रामल्ला में उस शहीद का शव पहुंचा कि जिसे एक साल पहले अतिग्रहणकारी ज़ायनी सैनिकों ने शहीद करने के बाद उसके शव को अपने पास रख लिया था। ये अवधि मोहम्मद के परिवारों के लिए एक सदी से भी बड़ी थी। ईश्वर जानता है कि मैं किस हाल में थी। ईश्वर जानता है कि मुझ पर क्या गुजरी। जब मैं उसके बारे में सोचती थी तो मुझ पर क्या गुजरती थी। अल्लाह का शुक्र है कि मेरे बच्चे का शव अतिग्रहणकारियों के कब्जे से आजाद हो गया। अतिग्रहणकारी ज़ायनी शासन ने 2015 से अब तक 65 शहीद फिलिस्तीनियों के शवों को अपने कोल्ड स्टोरेज में रख रखा है ताकि इन शहीदों की आड़ में उन परिजनों को भीषण यातनाएं दें। ये कार्रवाई सारे अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है। ये ऐसी हालत में है कि अब भी 320 फिलिस्तीनियों के बारे में कुछ पता नहीं है। फिलिस्तीनियों का कहना है कि इसराइल ने उन्हें सामूहिक कब्रों में दफन कर दिया है और उनके परिजनों को उनका शव नहीं दे रहा है। अल्लाह शहीदों का बदला उनसे ले, इसका जिम्मेदार फिलिस्तीनी प्रशासन है। वो क्षण कितना सख्त है जब फिलिस्तीनी परिवार अपने शहीदों के शवों का स्वागत करते हैं और इस तरह से फिलिस्तीनियों के खिलाफ इसराइल के अपराधों का सिलसिला जारी है। फिलिस्तीन से IRIB के लिए खालिद सवर्ना की रिपोर्ट।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा।
और श्रोताओं, अब रुख करते हैं हम भारत का। भारत नियंत्रित कश्मीर के भूतपूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि देश की केंद्र सरकार कश्मीरियों के बारे में शत्रुतापूर्ण नीति अपनाए हुए है। श्रीनगर से सिप्ते मोहम्मद हसन।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष اور جموں کشمیر کے بھوت پورو مکھیمنتری ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ نئی دہلی کو دیر سویر جموں کشمیر کے وشیش اختیارات لوٹانے ہوں گے۔ سری نگر میں آج بہت بڑی جن سبھا کو سمبوجھت کرتے ہوئے ڈاکٹر عبداللہ نے نئی دہلی کے موجودہ پرشاسن پر تابڑ توڑ آکرمن کرتے ہوئے کہا کہ اس پرشاسن نے جس طرح سے ان کے انوسار غیر آئینی طور پر دھارا 370 اور 35A کا خاتمہ کیا اور اس سے جموں کشمیر کے لوگوں کے دل چھلنی ہوئے اور دو ورش سے زائد سمے کے بیچ بھی جس طرح سے کشمیری لوگوں کو دبایا جا رہا ہے اور آئے دیوس نئے قانون لائے جا رہے ہیں، اس سے ہماری شناخت کو ختم کرنے کا پریاس ہو رہا ہے۔ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس سے کچھ لابھ حاصل ہونے والا نہیں۔ ڈاکٹر عبداللہ نے کہا کہ کسانوں کے کامیاب ابھیان نے یہ بات سدھ کر دی ہے کہ جب جنتا اپنے حقوق کے لیے اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں تو انہیں سفلتا پراپت ہوتی ہے۔ کسانوں کے کامیاب ابھیان نے ہمارے حوصلے بھی بڑھائے ہیں اور میرا یہ ماننا ہے کہ نیشنل کانفرنس جموں کشمیر کے وشیش اختیارات واپس لانے میں سفل ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر عبداللہ نے کہا کہ ڈیموکریسی میں لوگوں کے خواہشات کا احترام لازمی ہے، پرنتو موجودہ پرشاسن ان کے انوسار طاقت کے بل پر اپنا پارٹی منشور لوگوں پر مسلط کرنا چاہتی ہے جو ڈیموکریسی کے لیے خطرناک ہے۔
مگر نیشنل کانفرنس نے یہ دکھایا کہ یہ گراس روٹ کی جماعت ہے اور زمین سے لوگوں سے الیکشن کرتی ہے۔ میں آپ سے صرف دو چیزیں کہنا چاہتا ہوں جو بہت ضروری ہیں۔ ایک، کیونکہ آپ لوگ جوان ہیں، کل آپ لوگوں نے اس ریاست کا اور اس جماعت کا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھانا ہے۔ لوگوں کی نظریں آپ پہ ہوں گی کہ آپ کیسے چلیں گے، کہ آپ کا سچ مچ انسانیت پہ رہیں گے، انسان کے ساتھ انسان کے طرح طریقے سے چلیں گے، بہنوں کے ساتھ کیسا رشتہ رکھیں گے اور ماں باپ کی عزت کیسے کریں گے۔ اور خاص کر آپ سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، نماز کو قائم کیجیے۔ جب تک آپ اللہ کے راستے پہ نہیں چلیں گے آپ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ سب سے پہلے اللہ کی رسی کو تھامنی ہے، اور جس نے اللہ کی رسی کو تھاما ہوگا وہ کبھی گر نہیں سکتا، اور اللہ کے سب بگائے کہیں جھکیے مت، وہی ہمارا سب کچھ ہے اور اسی کے پاس ہم نے جانا ہے۔ اس لیے بہت سی طاقتیں آئیں، بہت سی مشکلیں آئیں، مگر اگر آپ کا ایمان صحیح ہوگا اور آپ کا راستہ صحیح ہوگا تو اللہ تعالیٰ آپ کے راستے کو خود صاف کرے گا اور آپ کامیاب ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی کہوں، کام بہت کرنا ہے، محنت بہت کرنی ہے۔
اس اوسر پر عمر عبداللہ نے بھی نئی دہلی پر تابڑ توڑ حملے کیے اور کہا کہ وہ صرف وکتوی دینا جانتے ہیں، پرنتو زمینی سطح پر جو ناراضگی پائی جا رہی ہے نئی دہلی کو چاہیے کہ اب مزید سمے ضائع کیے بغیر جموں کشمیر کے وشیش اختیارات انہیں واپس کریں۔ انہوں نے کہا کہ ودھان سبھا چناؤ میں ان کا دل بھرپور بھاگ لے گا اور یہاں سے ایسے لوگوں کو دور کریں گے جنہوں نے جموں کشمیر کو نقصان پہنچایا ہے۔ اس موقع پر نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے بھی نئی دہلی پر تابڑ توڑ حملے کرتے ہوئے کہا کہ نئی دہلی نے کشمیر کے حوالے سے جو بلند باغ دعوے کیے گئے تھے وہ سب جھوٹ ثابت ہوئے اور اب ہمارا یہ ماننا ہے کہ انہیں کسی بھی حال میں جموں کشمیر کو خصوصی اختیارات واپس کرنے ہوں گے۔ اس بیچ جموں کشمیر پرشاسن نے لوگوں سے کہا ہے کہ کووڈ کا نیا وائرنٹ اومیکران سامنے آیا ہے، اس حوالے سے لوگوں کو گائیڈ لائنز دی گئی ہیں۔ اس بیچ جموں کشمیر کے وبھن چھیتروں میں آج بھاری ہمپات کے کارن سامانی جن جیون است ویست ہو کر رہ گیا ہے۔ میدانی چھیتروں میں اگرچہ بارشیں ہوئی ہیں پرنتو پہاڑی چھیتروں میں بھاری ہمپات کے سماچار ہیں۔
سبت محمد حسن، ریڈیو تہران، سری نگر۔
اسی کے ساتھ راجنیتک چرچا کا دینک کارکرم یہیں پر سماپت ہوتا ہے۔ یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ ابھی آپ نے راجنیتک چرچا سنی۔ سبھا کے اس بھاگ میں آپ ہمارے ساپتاہک پریاس کو سنیں گے آج کل کے روپ میں، لیکن اس سے پہلے پیش ہے پوتر قرآن کی آیتوں کی سنکشپت سمیکشا پر آدھارت کارکرم قرآن ایشوریہ چمتکار۔
واستو میں یہ قرآن وہ مارگ دکھاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے، اور ایمان والوں کو جو اچھے کام کرتے ہیں شبھ سوچنا دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا بدلہ ہے۔
قرآن ایشوریہ چمتکار۔
प्रिय श्रोताओं, कार्यक्रम कुरान ईश्वरी चमत्कार की एक अन्य कड़ी लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आशा है पसंद करेंगे। आइए पहले सूरह मरियम की आयत नंबर 6 और 7 की तिलावत सुने।
यरिथुनी व यरिथु मिन आल याकूब वजअलहु रब्बी रदिया या ज़करिया نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا۔
پربھور مجھے ایسا اتراधिकारी پردان کر جو میرا اور یعقوب کے ونش کا وارث ہو اور اسے اپنی پرسنتا کا پاتر بنا۔ اس کے اتر میں ایشور نے کہا، ہے زکریا، ہم تمہیں ایک پتر کی شبھ سوچنا دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے، اور اس سے پورو ہم نے کسی کا یہ نام نہیں رکھا۔
جیسا کہ پچھلے کاریکرم میں ہم نے بتایا تھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو اس بات کی چنتا تھی کہ ان کی مرتیو کے پشچات کہیں ان کی جاتی کے لوگوں میں سے کوئی ان کا اتراधिकारी ہونے کا دعویٰ نہ کر دے، اور اس پرکار ایشوریہ پرتنیدھتو کا پد ایوگیہ ویکتی کے ہاتھ میں چلا جائے۔ اسی لیے انہوں نے ایشور سے ایک یوگیہ و سکشم پتر کی پرارتھنا کی۔
یہ آیتیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے ونش کی وراثت یا دھروہر کی اور بھی سنکیت کرتی ہیں، کیونکہ حضرت زکریا کی پتنی حضرت سلیمان کے ونش سے تھیں جو حضرت یعقوب کے پتر یہودا کے پتروں میں سے ایک تھے، اور انہیں اپنے پتا کی اور سے بہت دھن سمپتی ملی تھی۔ اتہ یہ بات بڑی سوابھاوک تھی کہ حضرت زکریا اپنے اتراधिकारी کے بارے میں سوچتے، کیونکہ ان کے پاس موجود پیغمبروں کی دھروہر یدی ایوگیہ و اپویتر لوگوں کے ہاتھ لگ جاتی تو اس سے سماج میں بہت سی برائیاں پھیل سکتی تھیں۔
اسی آدھار پر انہوں نے ایشور سے اپنی پرارتھنا جاری رکھتے ہوئے کہا کہ ان کا اتراधिकारी یوگیہ، پریے اور ایشور کی پرسنتا کا پاتر ہو۔ کچھ ویاخیاکاروں کا کہنا ہے کہ اس آیت میں پریوگ ہونے والے وراثت کے شبد کا تاتپریہ دھن سمپتی کی دھروہر نہیں بلکہ پیغمبری کا پد ہے، کنتو ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ یہ دونوں ہی باتیں سمبھو ہیں۔ ارتھات حضرت زکریا ایشور سے پرارتھنا کرتے ہیں کہ وہ انہیں ایک پتر پردان کرے جو ان کے بعد ان کے مال کا بھی وارث ہو، اور ان کے پشچات ایشور کی اور سے پیغمبر بھی بنایا جائے۔
ایشور نے حضرت زکریا کی پرارتھنا کو سویکار کیا اور انہیں ایک ایسے پتر کی شبھ سوچنا دی جو وبھن آیاموں سے ادوتی ہو تتھا اس میں کچھ ایسی وشیشتائیں ہوں جو اس سے پہلے کسی میں نہ تھیں۔ ایشور نے اس پتر کا نام سوئم نردھارت کیا اور اسے بچپن میں ہی پیغمبری کا پد پردان کر دیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام بچپن سے ہی بہت بدھیمان تھے۔ انہوں نے اپنے جیون کی وشیش پرستھتیوں کے کارن جن کے چلتے انہیں سدیو یاترا میں رہنا پڑتا تھا وواہ نہیں کیا تتھا سانسارک آنندوں سے آنکھیں موندے رہے، جیسا کہ ان کے بعد حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام نے بھی انہی کارنوں سے وواہ نہیں کیا۔
ان آیتوں سے ہم نے سیکھا کہ سنتان کی اچھا ایک سوابھاوک اچھا ہے، اور ایشور سے سنتان کی پرارتھنا پیغمبری کے پتھ سے ویرودھاباس نہیں رکھتی۔
بچوں کا نام رکھنے میں بہت ادھک ساودھانی سے کام لینا چاہیے، کیونکہ نام سنسکرتی، آستھا اور رچیوں کا چنھ ہوتا ہے۔
آئیے اب سورہ مریم کی آیت نمبر 8 اور 9 کی تلاوت سنیں۔
قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا
زكريا نے کہا प्रभुवर किस प्रकार मेरा एक पुत्र हो सकता है जबकि मेरी पत्नी बांझ है और मैं बुढ़ापे के कारण अक्षम हो चुका हूँ फरिश्ते ने कहा ऐसा ही है तुम्हारे पालनहार ने कहा है कि ये कार्य मेरे लिए अत्यंत सरल है और इससे पूर्व मैं तुम्हारी रचना कर चुका हूँ जबकि तुम कुछ भी नहीं थे
यद्यपि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने स्वयं ईश्वर से पुत्र के लिए प्रार्थना की थी किंतु उन्हें ज्ञात नहीं था कि उनकी प्रार्थना किस प्रकार पूरी होगी क्या वे और उनकी पत्नी युवा बन जाएंगे और फिर उनके संतान होगी अथवा इसी वृद्धावस्था में ईश्वर उन्हें संतान प्रदान करेगा ये प्रश्न और आश्चर्य पैगंबरी के पद से विरोधाभास नहीं रखता क्योंकि पैगंबरों का ज्ञान भी सीमित है और उन्हें गुप्त बातों का ज्ञान भी उतना ही होता है जितना ईश्वर चाहता है
स्वाभाविक है कि सर्व सक्षम ईश्वर जो सृष्टि का रचयिता भी है और जिसने प्रकृति के कानून भी बनाए हैं प्राकृतिक सिद्धांतों को परिवर्तित या सीमित भी कर सकता है क्योंकि वो पूरी सृष्टि का मालिक है
इन आयतों से हमने सीखा कि बांझ महिलाओं व पुरुषों को ईश्वर की दया व कृपा की ओर से निराश नहीं रहना चाहिए क्योंकि अनेक उदाहरण हैं कि इस प्रकार के लोगों के यहाँ भी संतान हुई है
अपने जन्म और रचना के बारे में चिंतन मनन से ईश्वर की शक्ति के बारे में हर प्रकार का संदेह समाप्त हो जाता है
आइए अब सूरह मरियम की आयत नंबर 10 और 11 की तिलावत सुने
قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا
زكريا نے کہا प्रभुवर मेरे लिए कोई चिन्ह निर्धारित कर दे ईश्वर ने कहा कि तुम्हारा चिन्ह यह है कि तुम निरंतर 3 दिन रात बात नहीं कर सकोगे तो वे अपनी मेहराब अर्थात उपासना स्थल से बाहर निकलकर अपनी जाति के लोगों की ओर गए और उन्हें संकेत किया कि वे हर भोर व संध्या को ईश्वर का गुणगान करें
कुरान मजीद की व्याख्याकारों के अनुसार हज़रत ज़करिया ने इस बात की ओर से निश्चिंत होने के लिए कि उन्होंने जो आवाज़ सुनी थी वो शैतान का उकसावा नहीं बल्कि ईश्वरीय वाणी थी ईश्वर से निवेदन किया कि वो उनके लिए कोई चिन्ह निर्धारित करे ईश्वर की ओर से आवाज़ आई कि चिन्ह ये है कि वे 3 दिनों तक ईश्वर के गुणगान के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बोल पाएंगे
ईश्वर की ओर से ये चिन्ह मिलने के बाद हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम अपने उपासना स्थल से बाहर निकले और लोगों को हर सुबह व शाम ईश्वर के गुणगान और उपासना का निमंत्रण दिया और चूंकि वे बोल नहीं सकते थे इसलिए उन्होंने संकेतों के माध्यम से ये बात कही
इन आयतों से हमने सीखा कि हमारे शरीर का हर अंग ईश्वर के इरादे के अधीन है और यदि वो न चाहे तो संपूर्ण स्वास्थ्य के बावजूद अंग अपना काम नहीं कर सकते
ईश्वर का गुणगान और उपासना मौसमी व अस्थाई नहीं बल्कि हर दिन सुबह व शाम निरंतर व सर्वकालिक होनी चाहिए ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है रेडियो तेहरान सच्चाई और उन सब की आवाज जिनकी आवाज कोई नहीं सुनाता ताज़ा समाचारों और सटीक समीक्षाओं के लिए हमसे जुड़िए और हमेशा जुड़े रहिए और अब रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा का अगला कार्यक्रम। आज कल
श्रोतागण, कार्यक्रम आजकल में आपका स्वागत है। स्वाति और कायम रिजवी का सलाम स्वीकार करें। इस कार्यक्रम में हम अफगानिस्तान में कट्टरपंथी विचारधारा वहाबियत की जड़ों की समीक्षा करेंगे।
दोस्तों, अफगानिस्तान में हालिया वर्षों में और खास तौर पर तालिबान के सत्ता में आने के बाद दाइश के हमलों में सैकड़ों बेगुनाह लोग मारे गए, जबकि दूसरी ओर इस देश के प्रशासन के सामने गंभीर चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। इस खतरे ने पिछले 40 वर्षों में अफगानिस्तान के संकटमय हालात के कारण पड़ोसी देशों पर भी उसका असर डाला है और उन्हें चिंतित कर रखा है। हम अपनी इस चर्चा में अफगानिस्तान के भीतर चरमपंथ और वहाबियत की जड़ों को अलग अलग पहलुओं से देखेंगे। इस कार्यक्रम में हम भूमिका के तौर पर अफगानिस्तान में दाइश की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करेंगे, जबकि इसके बाद कुछ कार्यक्रमों में हम अफगानिस्तान में चरमपंथ की जड़ों और दाइश की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करेंगे, जबकि इसके बाद कुछ कार्यक्रमों में हम अफगानिस्तान की पड़ताल करेंगे।
पंद्रह अगस्त की तारीख थी कि तालिबान बगैर किसी रुकावट के अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में दाखिल हो गए। दूसरी ओर कुछ ही दिनों के भीतर इस देश से अमेरिका का आखिरी सैनिक बाहर निकल गया। अफगानिस्तान से अमेरिका और नेट के सैनिकों की शर्मनाक वापसी के साथ ही तालिबान और आम जनता में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि आमजन को यह आशा हुई कि शायद अब इस देश में जंग का सिलसिला रुक जाए और सुरक्षा व स्थिरता के माहौल में सामान्य जीवन गुजारने का मौका मिले।
लेकिन सियासी हालात पर गहरी नजर रखने वाले टीकाकारों ने अफगानिस्तान में अमेरिका की लंबी उपस्थिति और पिछले 40 वर्षों के दौरान अफगानिस्तान में विदेशियों के हस्तक्षेप को देखते हुए ये आशंका जताई है कि दाइश जैसे आतंकी संगठनों का खतरा सिर उभार सकता है, और तालिबान का ये समझ लेना कि अफगानिस्तान में दाइश की जड़ सूख चुकी है जल्दबाजी पर आधारित एक अवलोकन है।
इराक और सीरिया जैसे देशों में अमेरिकी व पश्चिमी सेनाओं की कार्यशैली और रणनीति के मद्देनजर टीकाकारों को यकीन था कि अमेरिका कभी भी अफगानिस्तान को उसके हाल पर छोड़ देने के बाद अपना हस्तक्षेप बंद नहीं करेगा। अमेरिका और पश्चिमी देशों के बारे में इस प्रकार की कल्पना रखना बेकार है।
इसी बीच दूरदर्शिता रखने वाले विचारकों, खास तौर पर ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामेनेई ने अफगानिस्तान के लिए विदेशी खतरों की ओर से हमेशा सावधान किया है और इस देश की जनता और नई सरकार को सचेत किया है। सत्ता के बारे में तालिबान की वापसी के तत्काल बाद पूर्वी अफगानिस्तान के इलाकों जैसे जलालाबाद में तालिबान के खिलाफ हमले शुरू हो गए, जिनकी जिम्मेदारी दाइश ने स्वीकार की।
जबकि तालिबान यह समझ रहे थे कि अफगानिस्तान में दाइश का सफाया हो चुका है और वह दाइश की ओर से निश्चिंत थे। दाइश ने पहले पूर्वी अफगानिस्तान में तालिबान के सदस्यों और गाड़ियों पर छोटे हमलों से शुरुआत की और फिर तालिबान ने दाइश के बचे हुए तत्वों को पकड़ने और मार डालने के लिए व्यापक ऑपरेशन शुरू कर दिया, मगर यह प्रकरण पूर्वी अफगानिस्तान तक सीमित नहीं रहा। दाइश ने अपने अस्तित्व का ऐलान करते हुए कुंदूज प्रांत के शहर सैयदाबाद में शियों की मस्जिद पर उस समय आतंकी हमला किया जब वहां जुमे की नमाज हो रही थी। इस हमले में दर्जनों नमाजी मारे गए। इसके एक हफ्ते के बाद कंधार में भी शिया मस्जिद में भी आतंकी हमला हो गया। इस हमले में भी दर्जनों नमाजी शहीद हो गए।
ये सवाल भी महत्वपूर्ण है कि क्या वजह है कि दाइश के हमलों की शुरुआत पूर्वी इलाकों से हुई। उसके बाद ये हमले काबुल पहुंचे और फिर काबुल से उत्तरी अफगानिस्तान और फिर दक्षिणी अफगानिस्तान तक फैल गए। इस बारे में अलग अलग विचार पाए जाते हैं। तकफीरी चरमपंथी संगठन दाइश की गतिविधियों की जड़ों की समीक्षा करने से पहले हालिया दिनों में इस आतंकी संगठन के हमलों के कारणों पर नजर डाल लेते हैं।
तालिबान ने काबुल और जलालाबाद सहित देश के अलग अलग शहरों में प्रवेश करने के साथ ही वहां की जेलों में बंद कैदियों को, जिन्हें पिछली सरकारों ने अलग अलग अपराधों में जेलों में डाल दिया था, रिहा कर दिया, जबकि इनमें से कुछ तो बेहद खतरनाक अपराधी थे, यहां तक कि कई तो दाइश के सदस्य थे। रिपोर्टों के अनुसार काबुल की पुल चरखी जेल में और बगराम एयरबेस की जेल में हजारों की संख्या में कैदी थे, जिन्हें काबुल पर नियंत्रण पाने के बाद तालिबान ने रिहा कर दिया।
इन कैदियों में अच्छी खासी तादाद आतंकी संगठन दाइश के तत्वों की थी, जो पिछली सरकारों में अलग अलग आपराधिक घटनाओं में लिप्त होने के कारण गिरफ्तार कर लिए गए थे, जिसके बाद उन्हें जेलों में डाल दिया गया था। कुछ टीकाकार तालिबान के इस कदम को बहुत बड़ी रणनीतिक गलती मानते हैं, लेकिन इसके बावजूद तालिबान का तो यही दावा है कि बगराम तक तालिबान के पहुंचने से पहले ही दाइश के तत्व जेल से भाग चुके थे। चूंकि बगराम छावनी अमेरिका के नियंत्रण में थी और अमेरिकी सैनिकों के हाथ में इसका संचालन था, जबकि अमेरिकियों के जाने के बाद अमेरिका की घटक अफगान फोर्सेस ने इस छावनी को अपने हाथ में ले लिया, इसलिए तालिबान के इस दावे में थोड़ी सच्चाई नजर आती है कि अमरीका ने दाइश के तत्वों के भाग निकलने के लिए अनुकूल हालात पैदा कर दिए थे, जो शोचनीय विषय है।
एक प्रत्यक्षदर्शी जो काबुल में तालिबान के प्रवेश के समय हालात को देख चुके हैं, बताते हैं कि हमें आदेश दिया गया था कि 200 दाइशी आतंकियों को, जो बगराम हवाई छावनी के करीब एक जेल में रखे गए थे, रिहा न किया जाए, बल्कि उन्हें पड़ोसी देशों की इंटेलिजेंस एजेंसियों को सौंप दिया जाए। मगर जब हम जेल में पहुंचे तो देखा कि सारे कैदी वहां से भाग चुके हैं। कुछ टीकाकार मानते हैं कि यही दाइश से संबंध रखने वाले ये कैदी जेलों से आजाद होने के बाद आतंकी संगठन के अन्य तत्वों से मिलकर काबुल, कुंदूज और कंधार में बड़े हमले करने में सफल हुए।
सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो अफगानिस्तान में दाइश अब एक बड़े खतरे के तौर पर सामने मौजूद है, जिसके बारे में इससे पहले तक आशंकाएं जताई जाती थीं कि यह खतरा अफगानिस्तान को परेशान कर सकता है। आतंकी संगठन के हमलों ने, खासतौर पर शिया समुदाय पर हो रहे उनके बड़े हमलों ने, तालिबान को नई परेशानी में डाल दिया है। इस स्थिति के कारण तालिबान की क्षमता पर ही सवालिया निशान लग गया है, जो सुरक्षा की स्थापना को अपनी बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश करने की कोशिश में थे। इस स्थिति ने अब तो पड़ोसी देशों को भी चिंता में डाल दिया है, क्योंकि अगर अफगानिस्तान में ये आतंकी हमले और इसके नतीजे में अस्थिरता की हालत जारी रहती है तो अफगान शरणार्थियों की बाढ़ पड़ोसी देशों की ओर बढ़ेगी, जबकि असुरक्षा और गरीबी से जूझ रहा देश अफगानिस्तान चरमपंथी संगठनों के विस्तार का अनुकूल स्थान बन जाएगा। इन संगठनों ने इराक, सीरिया और दूसरे देशों में इस्लामी जगत की छवि को भारी नुकसान पहुंचाया और इस्लाम को इन्होंने बदनाम किया है।
इस संकट के पैदा होने के कारणों का मूल्यांकन किया जाए तो जहां दूसरे बहुत से कारण महत्वपूर्ण नजर आते हैं, वहीं अफगानिस्तान में मौजूद चरमपंथी विचारधारा की भी सघन समीक्षा करने की जरूरत है। यह देखना जरूरी है कि दाइश अफगानिस्तान के भीतर सिर उठाने वाला नया खतरा है या देश में वहाबियत और चरमपंथ की चिंगारी पहले से मौजूद थी। हालांकि कुछ टीकाकार मानते हैं कि अफगानिस्तान में अरब देशों की ओर से हालिया कई दशकों में किए जाने वाले प्रचार और वहाबियों की पैठ के नतीजे में जो हालात बने, उनसे आतंकियों को फलने फूलने का मौका मिल गया। इस देश में विचार, संस्कृति और मत के स्तर पर बड़ा बदलाव देखने में आया है। इस देश में हनफी सुन्नी मत नियो हम्बली मत में बदल गया है। इसी तरह चरमपंथी देवबंदी विचारधारा भी भारत और पाकिस्तान से होती हुई अफगानिस्तान में फैल चुकी है। इसको भी एक महत्वपूर्ण कारण माना जा सकता है। इन परिवर्तनों ने पिछले 40 साल में केवल सांस्कृतिक विचारों ही नहीं बल्कि धर्म, मत और सत्ता व शासन के बारे में भी सोचने का अंदाज बदल दिया है।
अगले कुछ कार्यक्रमों में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि रेडिकलाइजेशन और चरमपंथ के लिए अनुकूल जमीन क्या पहले से अफगानिस्तान में मौजूद थी या ये चीज बाहर से अफगानिस्तान में पहुंची है। अगर बाहर से पहुंची है तो इसका स्रोत कौन सी जगह है। हम आने वाले कुछ कार्यक्रमों में 27 अप्रैल 1978 के विद्रोह से पहले अफगानिस्तान में चरमपंथ की जड़ों के बारे में जायजा पेश करेंगे। इस विद्रोह के बाद सोवियत संघ की सेना से जंग के दौर में और फिर उसके बाद 20 साल तक अफगानिस्तान पर जारी रहने वाले अमरीकी कब्जे के दौरान क्या घटनाएं हुई हैं और किस तरह के हालात बने हैं, इसका भी हम जायजा लेंगे।
तो श्रोतागण, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम तक हमें अनुमति दें।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजकल और अब समय मुख्य समाचारों के सारांश का। ईरान और वेनेजुएला ने द्विपक्षीय संबंधों में विस्तार पर बल दिया है। उप विदेश मंत्री ने बल देकर कहा कि ईरान अपनी मांगों से पीछे नहीं हटेगा। भारत के नागालैंड में पुलिस ने गलती से 13 लोगों की हत्या कर दी। तो श्रोताओ, इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा चाहते हैं। खुदा हाफिज़।